Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो हमने पहले गुजराती में ही पढ़ा था, उसके बाद हिंदी में भी पढ़ा. अंग्रेजी तो कहते हैं, हमको पूछते हैं नहीं, आप अंग्रेज जानते हो कि नहीं. बोले हमारा बाप ने नहीं पढ़ा तो हम क्या पढ़े. तो हमने कहा हम अंग्रेजी नहीं जानते. तो उन्होंने कहा कि मेरी मुक्ति हो गई तो पुष्प वृष्टि होगा, देवता नगाड़े बजेंगे, पुष्प वृष्टि होगा, वातावरण ही सुहावना होगा, देवता स्वागत करने के लिए आएंगे, बड़ा आनंद का वातावरण. और ये सब कुछ नहीं हुआ तो समझ लेना कि तुम्हारे गुरु अटक गए, मुक्त नहीं हुए. और मैं कहां अटका हूं ये जानने की यदि तुम्हें इच्छा हो, हमारे गुरु कहां अटक गए, कहां लटक गए, कहां भटक गए, रास्ता जानने की इच्छा हो तो मेरा गुरु भाई है, वो क्रियायोगी है, हठयोगी है, उसके पास जाकर पूछना. हमारे गुरु का शरीर छूट गया लेकिन मुक्त नहीं हुए. कहां अटक गए तुम ध्यान से देखकर बताना. तो उसे पूछो, वो ध्यान में देखकर बता देगा कि हम कहां अटक गए. वास्तव में उनका शरीर छूटा. भक्त लोग समझ रहे थे कि पुष्प वृष्टि होगी, हुआ ही नहीं. तो भक्तों को निश्चय हुआ कि गुरु जी कहीं ना कहीं अटक गए. पता लगाना चाहिए तो क्रिया योगी के यहां गए. उनसे कहा तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखा तो बड़ा आश्चर्य हो गया. इतने दिनों से वेदांत साधना और ब्रह्म विचार करने वाला वह शरीर छोड़ने के बाद एक कीड़ा बनकर फल के अंदर बैठकर खा रहा है, फल खा रहा है. तो उसने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे गुरु की अवस्था तो बड़ी दयनीय है और तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य घटना है कि तुम्हारा गुरु जहां शरीर छोड़ा है उसके सामने एक बेर का पेड़ था, उसमें पका हुआ लाल फल था. ठीक शरीर छोड़ने वाले समय में उसको वासना जग गई कि वो फल खाने की इच्छा जग गई. परिणाम हुआ शरीर छोड़ते ही वो कीड़ा बनकर वो फल खा रहा है. इस समय बेर के फल के अंदर मस्ती से पूंछ हिला हिला के बेर का फल खा रहा है. तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जाओ देखो, जहां तुम्हारे गुरु ने शरीर छोड़ा उसके आगे एक बेर का पेड़ है, वहां एक फल है, उसको तोड़ो. उसमें छोटा सा छेद होगा, धीरे से उस छिलके को उतारना, उसी के अंदर तुम्हारा गुरु बैठा है. पहले तो भक्तों को बहुत बुरा लगा, ये हमारे गुरु का अपमान कर रहा है. लेकिन सत्य घटना है, जाके देखो. तो जाके देखा तो वास्तव में फल था, ये एक छेद भी था. धीरे से छिलका उठाया तो वहीं कीड़ा बैठा हुआ था, खा रहे हैं. तो यही है तुम्हारा गुरु, अब क्या करें. तो उसने कहा कि इसकी वासना यहां अटक गई थी, इसके करीब कीड़ा बनकर फल खाया है, अब उसकी वासना भी खत्म हो गई है. तुम इसको ले जाके गंगा जी के जल में डाल दो तो गंगा जल के स्पर्श होते ही वो मुक्त हो जाएगा. तो ले जाके गंगा जल में डाल दिया तो वास्तव में गुरु मुक्त हो गए. पुष्प वृष्टि हुआ, बाजे बजे, वातावरण ही एकदम उमंग हो गया, आनंद का बन गया. तो उसी प्रसंग में हम तो माया की बात करने जा रहे थे ना, माया ने भटका दिया, एक तरफ ले गया. तो एक हठयोगी था, एक भक्त था. तो हठयोगी का लक्ष्य था कि पंचाग्नि से के ताप के तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना इसी जन्म में. तो बड़ा कठोर तपस्या में लग गया, खाना छोड़ दिया रामदेव की तरह 9 दिन तक. और पंचाग्नि तापने लगा. और दूसरा भजन करने लगा, हरे राम 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 हरे हरे, मस्ती से. तो नारद जी आए, देखा हे क्या कर रहा है इतना कठिन. बोले महाराज, भगवान के लिए हम तपस्या कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले, दर्शन कर ले, इसलिए हमने ये तपस्या की। तो आप, मैं देवर्षि नारद वैकुंठ जा रहा हूं, भगवान क्या कुछ कहना है तुम्हें? बोले हां, आप जा रहे हो तो हमारा संदेश सुना देना कि आपका भक्त आपके दर्शन के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, उसको दर्शन देने के लिए आप कब जाओगे पूछ लेना। नारद जी ने कहा कि ठीक है, हम पूछ लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ गए तो वो तपस्या भजन कर रहा है, दूसरा भक्त पेड़ के नीचे बैठा भजन कर रहा है। बोले तो क्या कर रहा है? भगवान के प्राप्ति के लिए, दर्शन करने के लिए भजन कर रहे हैं। तो आप, मैं देवर्षि नारद वैकुंठ जा रहा हूं, तो आप पूछ लेना भगवान से कि तुम्हारा भक्त तुम्हारा भजन कर रहा है, कब दर्शन देने के लिए जाओगे। बोले ठीक है, तुम्हारा भी संदेश दे देंगे भगवान को, जो कहेंगे वो। वैकुंठ गए, नारद जी सारा संसार का रिपोर्ट दिया तो कहा कि हम आ रहे थे, एक बड़ा कठोर तपस्या करने वाला भक्त मिला और वो आपके दर्शन करना चाहता है। बोले वो तो हमको भी पता है नारद जी, मेरे लिए वो तपस्या कर रहा है, वो तो हमको भी पता है। तो पता है तो कब जा रहे हो उसको दर्शन देने के लिए, बताओ। बोले इसी तरह पांच जन्म तक तपस्या करेगा, तब पांचवें जन्म के बाद हम उसको दर्शन देंगे। ये जीवन भर तपस्या करे, मरे फिर जन्मे फिर उसी तपस्या करे, पांच जन्म के बाद उसको हमारा दर्शन मिलेगा, बता देना। और जो दूसरा भजन कर रहा है, बोले जिस पेड़ के नीचे भजन कर रहा है वो इमली का पेड़ था, उसमें जितने पत्ते हैं उतनी जन्म तक इसी तरह भजन करेगा, संसार को बिल्कुल छोड़कर विरक्त होकर, हाँ तब जाकर हम उसको दर्शन देंगे। अरे बाबा, उसका तो पांच वर्ष है, पांच जन्म है, इसके तो उस पेड़ में तो गिन के साध्य ही नहीं है, अनंत पत्ते हैं, इसका मतलब उसको तो अनंत जन्म भक्ति करनी पड़ेगी। जाओ सुना दो नारद जी। आए और उस पहले योगी के यहां पहुंच गए। हाँ, अरे नारद जी आप आ गए वैकुंठ से? बोले हाँ, हमारा संदेश सुना है? बोले सुना दिया। क्या कहा भगवान ने, कब दर्शन देने के लिए आएंगे? बोले पांच जन्म तक ऐसे ही करेगा तपस्या, तब जाकर मिलेगा दर्शन। अरे बाबा, पांच जन्म? मर गया रे, तो मर ही गया वो, पांच जन्म की बात सुनते ही वो मर गया। नारद जी को बहुत बुरा लगा, बेचारा मर गया वो, अब उसको सुनाए कि नहीं सुनाए दूसरे को। फिर भी भगवान का संदेश ये तो सुना देना चाहिए, वो प्रतीक्षा में बैठा है। गए देख लिया, नारद जी आप आ गए? बोले हाँ, आपने हमारा संदेश भगवान को कहा? बोले कहा। बताइए कब दर्शन देने के लिए आने वाले हैं? बोले बेटा मत पूछो। फिर भी ये पेड़ देख रहे हो ना? बोले हाँ। किसका है? इमली का। पत्ते कितनी है, गिन सकते हो? नहीं महाराज, हैं? नहीं। भगवान ने कहा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतनी जन्म तक तुम इसी तरह जन्म लो, भजन करो, मरो, फिर जन्म लो, भजन करो, मरो, फिर जन्म लो, भजन करो, मरो, और कुछ नहीं करना। तो इतनी जितने पत्ते हैं उतनी जन्म तक भजन करते रहोगे, तब जाकर भगवान तुमको दर्शन देंगे। आहा, भगवान ने कहा दर्शन देंगे, अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, है ना? पत्ते तो चाहे जितने ही हो लिमिट हैं, हमारा जन्म तो खरबों अरबों अनंत जन्म तो ऐसे बेकार चला गया, क्योंकि भगवान ने अपने डायरी में लिख लिया है कि इतने जन्म के बाद दर्शन देने जाना है। हम क्यू में आई गए भगवान के दर्शनार्थियों के, तो क्यू में तो आ गए, तो कभी ना कभी दर्शन तो मिल जाएगा। हा? बड़े उत्साह से भजन करने लगा, और क्योंकि अब दर्शन पक्का है। उसी समय में वहां वैकुंठ में भगवान के सबसे नजदीक रहने वाली कौन है? हैं? अब भी अभी पढ़े हो? अब इतना कहानी क्यों सुना रहे हो? अभी अभी पढ़े हो। निकटवर्तिनी भगवान के अद्वितीय लक्ष्मी तो फिर भी दूर है माया से। ये आप लोग भ्रांति में नहीं पढ़ना कि लक्ष्मी बहुत नजदीक है, माया तो और नजदीक है लक्ष्मी से भी। निकटवर्तिनी माया और साथ क्या करती है वो, किम कुर्बाना, मैं क्या काम करूं, मैं क्या काम करूं। तो उसी समय में माया बिल्कुल नजदीक थी, आके हाथ जोड़ के, महाराज मैं क्या काम करूं। भगवान ने कहा मुझे मर्त्यलोक जाना है तो मेरे से पहले वहां पहुंच। और वो तो इस समय आंख बंद करके भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो सब पत्तों को गायब कर दे। किसको? इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं सब के सब गायब कर दे, एक भी पत्ता रहने नहीं देना। उसने कहा कि ठीक है। वो गई और सारे पत्ते को गायब कर दिया। पत्ते जब माया ने सारे पत्ते को गायब कर दिया तो भगवान वहां प्रकट हो गए। वो तो आंख बंद करके हरे राम भजन कर रहा है मस्ती से। नारद जी उसके पागलपना को देखकर वो वहीं खड़े हैं, इसका अब क्या होगा। उतने में भगवान वहां खड़े हो गए, नारद जी ने देख लिया। उसको तो पता ही नहीं चला, वो तो मस्ती से गा रहा है नाच रहा है। नारद जी ने देख लिया, हे भगवान क्या बात है, अभी कहा था इतने जन्मों के बाद दर्शन देने के लिए आऊंगा, अब भी आ गए दर्शन देने के लिए उसको, क्या बात है, झूठ बोलते हो हमारे सामने। बोले महाराज हम झूठ नहीं बोलते, हमने जो कहा था वही किया है। क्या कहा था हमने? बोले इमली के पत्ते जितने हैं उतने जन्म के बाद दर्शन देने जाएंगे कहा था, और तुम अभी आ गए, मरा ही नहीं है, एक जन्म भी बदला नहीं है, वो आ गए तुम। बोले मारा नारद जी देख लो पेड़ के ऊपर, यदि एक भी पत्ता कहीं मिलता है तो हम अभी चले जाएंगे। अब नारद जी खोज रहे हैं इमली के पेड़ में कहीं पत्ता मिले और भगवान को वहीं से वापस कर दे, कहीं कोई पत्ता नहीं मिला। तो बोलो नारद अब इसको दर्शन दूं कि नहीं। बोले महाराज आप अपने वचन से पक्के हैं तो दे दो, अब दर्शन तो देना ही पड़ेगा, हम हार गए भाई। तो ये सब काम जो पेड़ के पत्ते सब गायब करने का काम किसने किया? भगवान ने नहीं। ये तो किम कुर्बाना, वो तो बैठी है। और किस दिन आपके मुख से दांत गायब कर दे ये पता ही नहीं हो, शुरू तो कर दिया उसने, किया कि नहीं बोलो, है किया है ना। और किस दिन सबके सब खाली कर देगी, हाँ भरोसा नहीं है, अभी तो एक दो ही शुरू किया है। तो यही तो अघटित घटना पटी है सी माया, असंभव को संभव कर देती थी माया। आज ये व्याख्या माया के बारे में हो रही है, किम कुर्बान, निकटवर्तिनी और किम कुर्बान तिष्ठते तस्मात् सोपि मायी। उसी प्रकार से मायापति माई परमेश्वर, माई माने परमेश्वर, मायो उपाधि सन्निधि तद्वान इव, उसी माया के उपाधि के चलते वह भी माया की तरह सब कुछ करने में समर्थ हो गया। ये देखो परस्पर में हो रहा है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ करने वाली माया है, क्योंकि कर्तृ माया है। लेकिन माया ईश्वर के नजदीक रहकर ही कर सकती है, फिर दूर रहकर नहीं कर सकती। और माया के द्वारा सब कुछ करना पना उसको ईश्वर के, उस माया के नजदीक रहने के कारण लोग को भ्रांति होती है कि ईश्वर ने कर लिया, समझे नहीं। जैसे तुम और तुम्हारा शरीर, शरीर तुम्हारे नजदीक रह रहा है कि नहीं, हाँ? शरीर तुम्हारे नजदीक रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और तुम्हारे सान्निध्य से शरीर कर्म करने में समर्थ हो रहा है। किसके सान्निध्य से? तुम्हारी सान्निध्य से शरीर कर्म करने में समर्थ है, और तुम्हारा सान्निध्य यदि शरीर को प्राप्त न हो और तुम शरीर को छोड़ दो, शरीर क्या कर सकेगा? अब इस शरीर के नजदीक रहने के कारण लोगों को भ्रांति हो रही कि आत्मा सब कुछ कर रहा है। देख लो, आत्मा की चेतना शरीर को प्राप्त होकर लोगों को भ्रांति हो कि शरीर चैतन्य है, शरीर के कर्म ईश्वर में आरोप करके कहते हो कि ईश्वर आत्मा सब कुछ करता है। इसी को कहते हैं अन्योन्य अध्यास। तस्मा स्व अपि ईश्वरोपि मायी ईश्वरोपि मायोपाधि सन्निधे है तद्वान इव कार्यभूते देहादि भी तद्वत एव विभक्तेर वा विभक्त ईश्वरादि रूपेण अवतिष्ठते। अविभक्त होता हुआ भी माया के उन समस्त कार्य देह आदि में वह विभक्त हुआ सा रहकर भेद सा हुआ रहा है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्, गीता के उस श्लोक का इस वाक्य के साथ संबंध है। भगवान ने कहा है ना, आत्मा विभक्त शरीरों में अविभक्त होता हुआ भी विभक्त शरीरों में विभक्त सा प्रतीत हो रहा है। शरीर के विभक्त होने से आत्मा विभक्त नहीं होता, लेकिन प्रतीत क्या हो रहा है? शरीर के साथ उपाधि होने के कारण वो विभक्त सा प्रतीत हो रहा है। विभक्त ईश्वराद ईश्वरादि रूपेण अवतिष्ठते। तस्मात् एकस्मिन्नेव एकरसे परमात्मनि अद्वितीय, एक रस परमात्मा में अभ्युपगम्य माने अपि जीव ईश्वरादि सर्वलौकिक वैदिक सर्वभेद व्यवहार सिद्ध। हालांकि अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्मा आत्मा परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं है, फिर भी उपाधि के चलते ईश्वर और जीव में भिन्नता, और जीव जीवों में परस्पर भिन्नता, और जगत जीव में भिन्नता, और जगत ईश्वर में भिन्नता, ये परस्पर की जो भिन्नता भेदता है वह औपाधिक है, स्वरूपभूत नहीं है। इसलिए शास्त्रीय व्यवहार में मीमांसाओं के दृष्टि से और लौकिक व्यवहार में आप हमारे दृष्टि में ये जीव जीव की भिन्नता की प्रतीति, जीव ईश्वर की भिन्नता की प्रतीति, जीव जगत की भिन्नता की प्रतीति, जगत ईश्वर की भिन्नता की प्रतीति, परस्पर भिन्नता की प्रतीति, यह संभव है। कैसे संभव है? उपाधि से, माया के चलते। न च तयोर वस्तुअंतरस्य सद्भावात् अद्वैतवाद प्रसक्ति ही। उपाधियों के भिन्न होने से द्वैतवाद की प्राप्ति नहीं हो सकती, अद्वैतवाद ही सिद्ध होगा। तयोर वस्तुअंतरस्य सद्भावात्, तो परमात्मा, परमात्मा की सन्निधि में रहने वाली किंकरी माया, माया के कार्य से अलग अलग सिद्ध होने वाली जीव का भेद परस्पर भेद, और उसी उपाधि से अलग अलग सिद्ध होने वाले जीव ईश्वर का भेद, ये सब भेद होने पर भी स्वरूपतः परमार्थ में ईश्वर यानी परमात्मा ब्रह्म अद्वितीय ही है। इसलिए अद्वैतवाद का कोई नुकसान होने वाला नहीं। उधर अद्वैतवाद भी परमार्थ दृष्टि से अद्वैत अद्वैत ही रहेगा, माया और उपाधि के चलते व्यवहार में द्वैत रहेगा। विरोध तब होता कि व्यावहारिक सत्ता और शास्त्रीय सत्ता भी पारमार्थिक सिद्ध होता, तब फिर ब्रह्म का और जगत आदि का भेद सिद्ध होता, लेकिन इनकी अवस्था ही अलग है, एक ही अवस्था में भेद नहीं है। इसलिए पारमार्थिक अवस्था में अद्वैत होता हुआ भी व्यावहारिक जगत में द्वैत होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए सारा भेद व्यवहार सारा भेद मूलक ही होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। न च तयोर वस्तुअंतरस्य सद्भावात् अद्वैतवाद प्रसक्ति ही माया या अनिर्वचनीयते वस्तुत्वा अयोगा। ऐसा ही भगवान माया सदसद व्यक्तिवर्जित, माया अनिर्वचनीय है, इसमें क्या क्या प्रमाण है? ये वाक्य प्रमाण है कि वह सद असद और सद असद भिन्न अनिर्वचनीय। सद इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वह बाधित हो जाती है। असद इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि व्यावहारिक सत्ता में उसकी पूरी प्रतीति होता है। और सद असद उभय रूप मान लो तो ये सत और असत का साहचर्य संयोग होना संभव ही नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे? बोले अनिर्वचनीय, ये ऐसा ही है, ये कोई भी व्यक्ति गारंटी के साथ नहीं कह सकते। इति। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।